बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसबाहुद्दुजा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वुज़ू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनवान से लेक्चर्स का ये सिलसिला आपकी खिदमत में हम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम मौजू है, वुज़ू। याद रखें, वज़ू को दो तरह से पढ़ा गया है, वाव पे ज़बर के साथ भी और वाव पे पेश के साथ भी। दोनों तरह पढ़ना इसको दुरुस्त है, इसलिए ये बहुत ही अहम मौजू है कि जो भी रसूल का कलमा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुसलमान हैं, उनकी हर इबादत का आगाज़ वज़ू से होता है। अगर हमारा वज़ू दुरुस्त होगा तो हमारी इबादत दुरुस्त होगी, और अगर हमारा वज़ू ही दुरुस्त नहीं होगा तो इबादत भी दुरुस्त नहीं होगी। इन लेक्चर्स में हम कुरान मजीद की आयत के उनवान से भी बात करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू, अहले बैत अलैहिस्सलाम किस तरह वज़ू किया करते थे, उस पर भी हम बात करेंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम किस तरह वज़ू करते थे, ताबेइन तबा ताबेइन, जिब्राइल अमीन किस तरह वज़ू करने का हुक्म लेकर आए, इन सब बातों पर हम तफसील से रोशनी डालेंगे। इस सिलसिले का आज ये हमारा पहला लेक्चर है। आयते वुजू, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा कुमतुम इलस्सलात, ऐ साहिबाने ईमान, जब तुम नमाज के लिए उठो। ऐ वो लोग जो ईमान लाए, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक, तो पहले अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो। वमसाऊ बिरऊसिकुम व अरजुलकुम इलल काबैन, और अपने सरों के बाज हिस्से का और अपने पाँव का टखनों तक मसा कर लिया करो। ये सूरह मायदा की आयत नंबर 6 है। याद रखें, नमाज का मुकदमा वुजू है। नमाज शुरू करने से पहले हर मुसलमान, हर मोमिन वुजू करता है, और वुजू की कैफियत कुछ इस तरह है। पहले नियत करना होती है, हाथों को दो मर्तबा कलाइयों तक धोना, तीन मर्तबा कुली करना, तीन मर्तबा नाक में पानी डालना, ये तीनों अमूर जो हैं ये सुन्नत है। अब हम आमाले वुजू पर बात करते हैं। पहले है धोना और दूसरा है मसा करना। याद रखें, चेहरे का धोना, पहले चेहरा धोया जाता है आमाले वुजू में, फिर दायां हाथ धोया जाता है, फिर बायां हाथ धोया जाता है। यानी धोने दो हैं वुजू में, चेहरे का धोना और हाथों का धोना, और ये वाजिब है। यानी चेहरे का धोना और हाथों का धोना ये वाजिब है। इस तरह सर का मसा करना, मसे भी दो हैं, दाएं पांव का मसा करना, बाएं पांव का मसा करना, और ये भी वाजिब है। तो गोया कुरान मजीद के आयत के मुताबिक दो धोने हैं और दो ही मसा करना, यानी चेहरे का धोना और हाथों का धोना, इस तरह सर का मसा करना और पांव का मसा करना। अब हम चेहरे के धोने पे बात करते हैं। लंबाई में पेशानी के ऊपर उस जगह से लेकर जहां सर के बाल उगते हैं और ठोड़ी के आखिरी किनारे तक चौड़ाई में बीच की उंगली और अंगूठे के फैलाव में जितनी जगह आज है। फिर मैं अर्ज कर दूं, लंबाई में जहां से ये बाल शुरू होते हैं और ये ठोड़ी का आखिरी किनारा जो है, और चौड़ाई में अंगूठा, ये अंगूठा है मेरा और बीच की उंगली ये है, इसके दरमियान जो जगह आएगी ये चेहरे का धोना है। हाथों का धोना, दायां हाथ और बायां हाथ कोहनी से लेकर उंगलियों के सरों तक, यानी यहां कोहनी से लेकर उंगलियों के सरों तक आपको धोना है, और फिर इस तरह बायां हाथ कोहनी से लेकर, कोहनी इसमें शामिल करनी है, और उंगलियों के सरों तक धोना है। अब हम आमाले वुजू की वजाहत करते हैं। धोना, चेहरे और हाथों को धोने में वाजिब मिकदार तो वही है जो हमने अर्ज कर दी। कौन सी हमने अर्ज की है, मैं फिर एक दफा अर्ज कर दूं आपके सामने, कि जहां से सर के बाल उगते हैं और ठोड़ी के किनारे तक ये लंबाई में है, और चौड़ाई में ये अंगूठा और ये बीच वाली जो उंगली है, ये तो वाजिब मिकदार है। लेकिन यकीन करने के लिए कि आया वाजिब को धो लिया गया है या नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से भी धो लेना चाहिए। एहतियात, वाजिब की बिना पर चेहरे और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धोना चाहिए, और नीचे से ऊपर धोया जाए तो वजू बातिल है। यानी ऊपर से नीचे हाथों को धोना है, चेहरे को जब धोना है ये भी ऊपर से नीचे धोना है। अगर हम हाथों को यूं करके धोएंगे तो ये वजू बातिल हो जाएगा। हाथों को धोते वक्त मर्द पहली दफा कोहनी की पुश्त पर और दूसरी दफा बातिन पर पानी डाले। जब मैं दाएं हाथ को धोने लगाऊं तो मैं पानी लूंगा तो पहले ये पुश्त पर और बातिन ये है, फिर बातिन पर पानी डालूंगा। लेकिन औरत उसके बरअक्स करे, यानी पहली दफा कोहनी के बातिन पर औरत जब वजू करना शुरू करेगी तो यूं पानी लेकर पहले यहां से शुरू करेगी और उसके बाद यूं पीछे, यानी पहली दफा कोहनी के बातन पर और दूसरी दफा कोहनी की पुश्त पर पानी डालेगी औरत। यानी थोड़ा सा डिफरेंस है मर्द के वजू करने में और औरत के वजू करने में। वजू में चेहरे और बाजुओं का पहली दफा धोना वाजिब है, यह बात याद रखें। वजू में चेहरे और बाजुओं का पहली दफा धोना वाजिब है, दूसरी दफा धोना मुस्तहब है, तीसरी दफा या उससे ज्यादा बार धोना हराम है। जहां तक इस अमर का सवाल है कि कौन सा धोना पहला, दूसरा या तीसरा समझा जाएगा, इसका दारोमदार वुजू करने वाले की नियत पर है। लिहाजा अगर मिसाल के तौर पर पहली दफा धोने की नीयत से कोई शख्स 10 बार पानी चेहरे पर डाले तो कोई हर्ज नहीं है। यानी यूं चेहरे पर पानी डाल रहा है और उसकी नीयत में यह है कि मैं पहली दफा ही धो रहा हूं, यह मेरी पहली दफा शुमार हो, तो पहली दफा ही होगी। गोया कोई हर्ज नहीं, जितनी दफा वो पानी डाले वो उसका पहली दफा ही धोना समझा जाए। लेकिन अगर 3 दफा धोने की नीयत से 3 बार पानी डाले तो तीसरी बार पानी डालना हराम है। सर का मसा, मसा का मकाम, सर के 4 हिस्सों में से पेशानी से मिला हुआ हिस्सा, यानी सर के ऊपर ये जो पहला हिस्सा होगा जहां से बाल उगते हैं ऊपर, ये सर का मकाम है, मसे का मकाम है, इस मकाम पे आपने मसा करना है। मसा की वाजिब मिकदार, वाजिब कितना है, जिस कदर भी हो काफी है। यानी आपने हाथ को टच कर लिया मसा करने की नियत से तो ये काफी है, ये वाजिब मिकदार है। इतनी मिकदार कि अगर कोई देखे तो कहे कि उसने मसा किया है। मसा की मुस्तहाब मिकदार अर्ज में 3 मिली हुई उंगलियों के लगभग और तूल में 1 उंगली के लगभग, ये मसा की मुस्तहाब मिकदार है। बाएं हाथ के साथ मसा जायज है, यानी मसा आप इस हाथ से भी कर सकते हैं, ये जायज है। मुज्तहिद कह रहे हैं एहतियात वाजिब की बिना पर दाएं हाथ से मसा करना चाहिए, यानी आप मसा इस हाथ से करेंगे दाएं हाथ से, और कोशिश करें कि सर का मसा करते वक्त आपके हाथों की उंगलियां पेशानी से ना लगने पाए। यानी ये जो पेशानी है यहां से आपके हाथों की उंगलियां ना लगे, पीछे तक ही रहे। सर की जिल्द पर मसा करना जरूरी नहीं है, बल्कि सर के अगले हिस्से के बालों पर मसा करना भी दुरुस्त है। लेकिन अगर एक शख्स के सर के आगे के बाल इतने लंबे हों, मसलन अगर कंघा करे तो चेहरे पर आ गिरे, तो उसे चाहिए मांग निकाल कर सर की जिल्द पर मसा करे या बालों की जड़ों पर मसा करे। सर के दूसरे हिस्से के बालों पर जो आगे को बढ़ाए हों, अगर वो मसा के मकाम पर जमा हुए हों तो उन पर मसा करना सही नहीं है। पांव का मसा करना, मसा का मकाम पांव के ऊपर है। मसा की पांव के मसा की वाजिब मिकदार उंगलियों के सरों से लेकर पांव के ऊपर वाले हिस्से के उभार तक, और अर्ज में जिस कदर भी हो काफी है, अगरचे ये मिकदार 1 उंगली हो। मसा की मुस्तहब मिकदार पूरे पांव के ऊपर, दाएं पांव का मसा बाएं पांव से पहले करना चाहिए। दाएं हाथ की हथेली से दाएं पांव का मसा करें, फिर बाएं हाथ की हथेली से बाएं पांव का मसा करें। पांव पर मसा का अर्ज जितना भी हो काफी है, लेकिन बेहतर है 3 जुड़ी हुई उंगलियों के बराबर हो, और इससे भी बेहतर यह है कि पांव के ऊपर वाले हिस्से का मसा पूरी हथेली से किया जाए। सर और पांव के मसा के मुश्तरका मिसाइल पर हम बात अब करते हैं। मसा में सर और पांव पर हाथ को खींचा जाए, अगर हाथ को रोक लिया जाए और सर या पांव को हरकत दी जाए तो मसा बातें ले, लेकिन अगर हाथ को खींचते वक्त सर या पांव मामूली हरकत करें तो कोई हर्ज नहीं, यानी मसा सही है। अगर किसी शख्स के हाथ की हथेली की तरी खुश्क हो जाए तो वो दूसरे पानी से तरी नहीं ले सकता, बल्कि उसे चाहिए कि वुजू के दूसरे अज़ा से तरी ले और उसी तरी से मसा करे। हाथ पर तरी इस कदर होनी चाहिए कि मसा के बाद सर और हाथ पर नजर आए। मसा के मकाम यानी सर और पांव का ऊपर वाला हिस्सा खुश्क होने चाहिए। अगर मसा के मकाम तार हों तो इंसान को चाहिए कि उन्हें खुश्क करे, लेकिन अगर उस पर तरी कम हो, इतनी कम हो जो तरी मसा के बाद नजर आए, उसके मतलब ये कहा जाए कि वो फकत हथेली की तरी है, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। सर और पांव पर कोई चीज मसलन चादर टोपी जुराब और जूता वगैरह मसा करते वक्त नहीं होना चाहिए, अगरचे वो चीज कितनी ही बारीक और नाजुक हो। तरी जिल तक पहुंच जाए। मसा का मकाम पाक होना चाहिए। अगर वो नजिस हो और इंसान ताकत न रखता हो कि उस पर मसा की तरी लगाए तो उसे चाहिए तयम्मुम करे। एक वीडियो आपके सामने हम दे रहे हैं, वुज़ू की वीडियो। इससे आप ये अंदाजा लगाएंगे, आपने गौर से देखना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اول ما نغسل شنو الكفين، غسل الكفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم المضمض ثلاث مرات. او تقول اللهم اطلق لساني بذكرك واجعله لهجا بشكرك، ثم الاستنشاق ثلاث مرات. وقول اللهم أشممني أو شممني ريح الجنة، ثم غسل الوجه. هاي الاستنشاق والمضمضة مستحبات، ثم غسل الوجه مرتين من قصاص الشعر، هذا يسمى قصاص الشعر، إلى أسفل الذقن طولا وعرضا ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى. هاي عرضا من قصاص الشعر طولا إلى أسفل الذقن، ثم غسل العارضين من المقدمة العلمية حتى أتأكد أنه غسلت وجهي تماما. وأقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، ثم غسل اليد اليمنى مرتين قليلا أعلى المرفق من أجل المقدمة العلمية حتى أتأكد أنه غسلت إيدي كلها، خوش عيني، منا إلى أسفل الأصابع، خوش عيني، من أعلى المرفق إلى شنو؟ إلى أسفل الأصابع، اليد اليمنى مرتين، وتقول اللهم سلمني كتابي في يميني ولا تسلمه في شمالي، ثم غسل اليد اليسرى مرتين بنفس الطريقة، مرة واحدة نفس الطريقة أيضا من أعلى المرفق إلى أسفل الأصابع، وتقول اللهم لا تعطني كتابي في شمالي وحاسبني حسابي يسيرا، ثم المسح على الرأس بمقدار 4 أصابع من قصاص الشعر إلى الأعلى بمقدار 4 أصابع أو 3، والمسح مسحة واحدة، خوش عين، مسحة واحدة، ثم مسح اليد اليمنى، الرجل اليمنى باليد اليمنى من الأطراف الأصابع إلى الكعب، خوش عيني، ويكفي ويجوز بإصبع واحد، ماكو إشكال، أيضا نفس الطريقة، وتقول اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل عليه الأقدام، خوش حبيبي، ها هي الطريقة، طريقة الوضوء إن شاء الله.
खुद आजमाई है। इस वीडियो में मौलाना साहब वज़ू के कौन कौन से मुस्तहब अमूर बजा लाए हैं, इन पर निशान लगाएं। हाथों को कलाइयों तक धोना, कुली करना और नाक में पानी डालना, चेहरे को धोना, दुआएं पढ़ना। एक और वीडियो आपके सामने है। सुनाई दे रहे हैं इस वीडियो में आयतुल्लाह अल-उस्मा आ गए। सैयद अली सैस्तानी साहब ने वुजू करते वक्त चेहरे को कितनी दफ़ा धोया है? 4 दफ़ा, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, ایک دفعہ ان میں سے ایک درست ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے. ایک اور ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں وضو کی. خود اسمائی ہے ایک. اس ویڈیو میں آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید ابو القاسم خوئی نے وضو کرتے وقت ہاتھوں کو کتنی دفعہ دھویا ہے؟ چار دفعہ، تین دفعہ، دو دفعہ، ایک دفعہ. کچھ مزید اس لیکچر کے متعلق ہم خود اسمائی آپ کو دے رہے ہیں. یہ پہلی ہے نماز کا مقدمہ کیا ہے. چار آپشن آپ کو دے رہے ہیں، روزہ، دوسرا نماز، زکوٰۃ، چوتھا ہے وضو. ایک درست ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے. خود اسمائی دوسری ہے، وضو میں چہرے کو دھونے کی واجب مقدار کتنی ہے؟ لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اگتے ہیں اور ٹھوڑی کے آخری کنارے تک، چوڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنی جگہ آ جائے، दूसरा, लंबाई में गर्दन तक और चौड़ाई में बीच की उंगली और अंगूठे के फैलाव में जितनी जगह आ जाए। तीसरा, लंबाई में पेशानी के ऊपर उस जगह से लेकर जहाँ सर के बाल उगते हैं और ठोड़ी के कना आखिरी किनारे तक चौड़ाई में कानों समेत। और चौथा, लंबाई में पेशानी के ऊपर उस जगह से लेकर जहाँ सर के बाल उगते हैं होंठों तक, बीच की उंगली और अंगूठे के फैलाव में जितनी जगह आ जाए। वुजू में चेहरे और हाथों को धोना चाहिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, चेहरा ऊपर से और हाथ नीचे से, एक दफा ऊपर से और दूसरी दफा नीचे से ऊपर। चौथी खुदसमाई है, हाथों को धोते वक्त मर्द और औरत पहली दफा कोहनी की पुश्त पर और दूसरी दफा कोहनी के बातन पर पानी डालें। मर्द पहली दफा कोहनी की पुश्त पर और दूसरी दफा बातन पर पानी डाले, लेकिन औरत उसके बरअक्स करे। मर्द पहली दफा कोहनी की पुश्त पर और दूसरी दफा बातन पर पानी डाले, लेकिन औरत भी उसी तरह ही करे। और चौथा जवाब है, मर्द पहली दफा कोहनी के बातन पर और दूसरी दफा पुश्त पर पानी डाले, लेकिन औरत उसके बरअक्स करे। इन चार में से एक दुरुस्त है, उस पर आपने निशान लगाने। पांचवी खुदसमाई, वुज़ू में चेहरे और बाजुओं का पहली दफा धोना वाजिब, दूसरी दफा धोना मकरूह, तीसरी दफा या उससे ज्यादा बार धोना हराम है। ये पहला जवाब है। दूसरा, पहली दफा धोना सुन्नत, दूसरी दफा धोना मुस्ताब और तीसरी दफा या उससे ज्यादा बार धोना हराम है। तीसरा जवाब, पहली दफा धोना वाजिब, दूसरी दफा मुस्तहब, तीसरी दफा या उससे ज्यादा बार धोना हराम है। और चौथा जवाब है, पहली दफा धोना वाजिब, दूसरी दफा मुस्तहब, तीसरी दफा या उससे ज्यादा बार धोना मुबाह है। छठी खुदसमाई है, सर के मसा का मकाम पिछला हिस्सा सर के ऊपर, पूरा सर गर्दन समेत, पेशानी से मिला हुआ दायां हिस्सा सर के ऊपर, सर के चार हिस्सों में से पेशानी से मिला हुआ एक हिस्सा सर के ऊपर, यह मसा का मकाम है। चार में से एक जवाब दुरुस्त है। सर के मसा की वाजिब मकदार तीन उंगलियों के बराबर काफी है, दो उंगलियों के बराबर काफी है, चार उंगलियों के बराबर काफी है, जिस कदर भी हो काफी है। एक जवाब दुरुस्त है, उस पर आपको निशान लगाना है। सर के मसा की मुस्तहब मकदार अर्श में मिली हुई तीन उंगलियों के लगभग और तूल में दो उंगलियों के लगभग, अर्श में तीन मिली हुई उंगलियों के लगभग और तूल में एक उंगली के लगभग, अर्ज में दो मिली हुई उंगलियों के लगभग और तूल में एक उंगली के लगभग। चौथा, अर्श में तीन मिली हुई उंगलियों के लगभग और तूल में चार उंगलियों के लगभग। सर का मसा चार जवाब में से एक ठीक है। दाएं हाथ के साथ जायज है, लेकिन एहतियात वाजिब की बिना पर बाएं हाथ से मसा करना चाहिए। बाएं हाथ के साथ जायज है, लेकिन एहतियात वाजिब की बिना पर दाएं हाथ से मसा करना चाहिए। पहले दाएं से फिर बाएं से मसा करना चाहिए। दोनों हाथों से बारी बारी मसा करना चाहिए। चार में से एक जवाब दुरुस्त है। सर का मसा का मकाम, सर के मसा का मकाम, सर की जिल्द पर मसा करना जरूरी नहीं, बल्कि सर के अगले हिस्से के बालों पर मसा करना भी दुरुस्त है, अगर बाल छोटे हों। سر کی جلد پر مسح کرنا ضروری ہے، بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسح کرنا بھی درست ہے اگر بال چھوٹے ہوں. سر کی جلد پر مسح کرنا ضروری نہیں بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسح کرنا بھی درست ہے اگر بال لمبے ہوں. سر کی جلد پر مسح کرنا ضروری ہے اور سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسح کرنا درست نہیں اگر بال چھوٹے ہوں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.